ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان میں لویا جرگہ کا اجلاس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، پچھلے دنوں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں لویا جرگہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس کا مقصد امریکہ کے ساتھ افغانستان کے اسٹریٹجک معاہدے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنا تھا، جو امکانی طور پر آئندہ کچھ مہینوں یا ہفتوں میں ممکن ہو سکے گا۔ لیکن اجلاس سے پہلے بھی اور اجلاس کے دوران بھی اور اجلاس کے بعد بھی اس اجلاس کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے۔ بہت سے حلقوں نے امریکہ کے ساتھ ہترا کے اسٹریٹجک معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ حتیٰ چونکہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے لویا جرگہ بلایا جا رہا ہے تو اس اجلاس میں بھی شرکت کرنا حرام ہے۔ لیکن حامد کرزئی نے اپنے بیان میں اور اپنی تقریر میں جو انہوں نے لویا جرگہ میں کی، یہ کہا کہ یہ سمجھوتا افغانستان کے مفاد میں ہے اور 2014 کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ عالمی برادری افغانستان کو تنہا چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں، مگر اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو اور لندن اسٹوڈیو سے۔ اپنے مہمانوں سے ہم گفتگو کریں گے مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی، اسلام آباد اسٹوڈیو چلتے ہیں جہاں پر یاور بخاری صاحب موجود ہیں۔ یاور بخاری صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یاور بخاری صاحب، اس اجلاس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس کے آغاز سے پہلے بھی اور آغاز کے بعد بھی اور اب تک مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اجلاس منعقد ہوا اور اجلاس میں لوگوں نے بشمول حامد کرزئی افغانستان کے صدر جو ہیں سب نے تقریریں کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو مجموعی طور پر افغانستان کی سطح پر اس اجلاس کو کیسا دیکھا جا رہا ہے اور کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے؟
جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے انخلاء چاہتا ہے۔ انخلاء چاہنے کے ساتھ امریکہ افغانستان میں اپنے کچھ فوجی اڈے بھی رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس خطے میں جہاں اس نے 10 سال گزارے ہیں، وہ ان 10 سالوں کے جو ہے وہ جو اس نے جن مقاصد کے لیے آیا تھا ان مقاصد کو مزید واچ کر سکے اور اپنے جو مفادات ہیں وہ حاصل کر سکے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب امریکہ جو ہے حامد کرزئی کے ساتھ، جو ان کا اپنا ہی ایک پپٹ پریزیڈنٹ ہے، اور اس نے حامد کرزئی نے اگرچہ اتنی طویل حکمرانی ہے ان کی کہ وہ اب تک وہاں پر اداروں کو قائم نہیں کر سکے، تو جب وہ اپنے ادارے ہی نہیں بنا سکے اور اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی حکومت کو اسٹیبلش نہیں کر سکے، تو اب چونکہ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں 2014 تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اور اس پہ بھی تحفظات ہیں لوگوں کے، اور اس پہ بھی جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کے تحفظات ہیں، اور ایون کہ افغان عوام کے تحفظات ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے امریکہ مکمل طور پر یہاں سے خالی ہو اور یہ افغانستان کے عوام اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہاں پر کس کو حق حکمرانی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر اس کی ہسٹری میں جایا جائے تو وہاں پر اب دیکھیں کہ جیسے رشیا وہاں سے گیا تھا، رشیا نے ان کو وہاں یہ سارا جو جنگ ہوئی وہ رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ایکچولی تنہا نہیں چھوڑا گیا تھا، وہاں پر کچھ ایسے پلیئرز تھے جو سراؤنڈنگ سے ان کو کنٹرول کر رہے تھے और वो जो वहाँ पर हुकूमत कायम हुई थी तालिबान की, उस तालिबान की हुकूमत ने वहाँ पर एक जुल्म जबर और इंतहा पसंदी और एक कब्जे की सी कैफियत कर दी थी कि जिससे घुटन और जबर जो है अफगान मुआशरे पे जाहिर हो रहा था और वो वहाँ के हालात जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे थे और बज़ाहिर वो पुरसकून थे लेकिन अंदर जो है वो एक इंतहा पसंदी का लावा पक रहा था। जो कि आप देखें ये दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में जब अमेरिका आया और उसने देखा कि यहाँ पर जो है ये वो इस जंग की आड़ में इस खत्ते में आया है तो उसने वहाँ पर वो किया। लेकिन अभी तक वो जो एक फैक्टर था जिसने इकतदार पर उस वक्त कब्जा कर लिया था और अफगान मुआशरे को एक घुटन का शिकार कर दिया था, वो अनासर अभी तक उनके काबू में नहीं आए। ज़ाहिर है वो एक ताकतवर फरीक है, वो उनको देखना चाहिए कि ये जो है वो अभी देखें हामिद करज़ई की जो हुकूमत है, ये हामिद करज़ई अभी काबुल से बाहर नहीं निकल सके हैं। मैक्सिमम उन्होंने अभी 6-7 जो सूबे हैं अपने उन सूबों तक अपना दायराकार बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन उसमें से भी एक सूबे में उन्होंने अभी तक कंट्रोल किया, वो भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, बाकी में अभी उनके हैंड ओवर होना बाकी है। उसके जो सलामती के अदारे हैं, जो अफगानिस्तान के तहफ्फुज़ के अदारे हैं, हामिद करज़ई उनको अभी तक कायम और इस्तेहकाम नहीं दे सके। ये तो इसका बैकग्राउंड है सारा। अब सूरत हाल यह कि हामिद करज़ई चूंकि अमेरिका के, मैं समझता हूँ ये मेरा अपना एनालिसिस है कि वो हामिद करज़ई जो हैं अमेरिका के एजेंट हैं और वो अमरीकी इस खत्े में अमरीकी जो मुदाखलत है उसके लिए जवाब पैदा करना चाहते हैं और उसको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये अब अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का एक नया एक शगुफा छोड़ा है जिसके लिए वहाँ के बहुत सारे हलकों ने, इवन के वहाँ के जो अहले तशय्यो एक बहुत पावरफुल वहाँ का एक सेगमेंट है और उनके उलमा काउंसिल ने इसको इस स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप का जो मुआहदा करें इसको उन्होंने हराम करार दे दिया है। इसी तरीके से शुमाली इत्तेहाद के लोग हैं, वो अगरचे इस वक्त बज़ाहिर उनका जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका कोई ऐसी लीडरशिप एस्टैब्लिश्ड है लेकिन वो लोग उस नजरिए के लोग मौजूद हैं और बहुत वो भी तादाद में हैं, वो भी इसको नहीं मानते हैं, इवन के काबुल से बाहर के लोग भी। अब उन्होंने ये किया कि इवन के पार्लियामान जो है वो खुद नहीं मानती और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हामिद करज़ई खुद भी इस मुआहदे के बारे में वो वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद भी इसी जो लोया जिरगा बुलाया, इस जिरगे से उन्होंने जो इफ्तिताही खिताब किया उसमें उन्होंने खुद भी कहा कि अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। अरे बाबा किस चीज़ की आपकी खुद मुख्तारी है, अमरीका के 1,00,000 से ज्यादा फौजी यहाँ आप पर बैठे हुए हैं, वो आप पर हुकूमत कर रहे हैं, आप कौन सी खुद मुख्तारी की बात करते हैं जो आपकी खुद मुख्तारी का वो एहतराम करेंगे। आप तो पहले ये बात करें कि अमरीका यहाँ से पहले जाए और जाने के बाद जो है फिर उनके साथ आप किस तरह के रिलेशन रखना चाहते हैं। आप अपने खिते को देखें, आप अपने अड़ोस पड़ोस को देखें, आपकी सरजमीन से अड़ोस पड़ोस में जो है अमेरिका जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है, आए दिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को जो है वो निशाना बनाया जाता है, उसको उसका मजाक उड़ा जाता है और उसकी धज्जियां भी खिंच जाती है पाकिस्तान की सलामती और वकार के। अमरीकी फोर्सेज जो हैं वो नेटो फोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान की ना सिर्फ जमीनी हदूद की खिलाफवर्जी करती हैं बल्कि फजाई हदूद की खिलाफवर्जी कर रही हैं। तो ये सारा कुछ और आप कह रहे हैं कि जी हम किसी गैर मुल्की फौज को जो है वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इस सारी सूरत हाल में ये इस वक्त जरूरत जो है मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट्स में है। अफगान कौम जो है इसमें जब तक शरीक नहीं होगी, इसमें ये जो वहां पर अफगानिस्तान में जो मुजाहमतकार हैं जब तक उनको भी शरीक नहीं किया जाएगा इस अमल में, आप एक जमहूरी अमल की तरफ आएं। अगर आप अफगानिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो फिर आप अफगान अवाम की बात करें, ना कि आप अपने आका अमरीका की बात करें, क्योंकि अमरीका तो चाहता है कि उसको जहां पे जवाब रहे, और अगर एक मुल्क का सरबराह मुमलकत खुद कहे कि नहीं जी आप हमें छोड़ के ना जाएं और आप यहां पर अपनी फौजें रखें और अपनी फोर्सेस को यहां पे रखें और हमें तनहा ना छोड़ें, बाबा किस चीज की तनहाई है। अफगानिस्तान एक गयूर कौम है, वहां पर वो जो लोग हैं मगर आप अवाम को उसमें शामिल तो करें। मैं ये समझता हूँ ये जो
जी मैं फिर हाजिर हूँ, चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं मुमताज दानिश्वर जनाब कैसर इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
कैसर इमाम साहब, ये जो लोया जरगा था इसका एजेंडा जो बयान किया गया उसमें ये कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा और दूसरे तालिबान के साथ अमन मुजाकरात की बातचीत और उसका जायजा लिया जाना, जबकि जो शुमाली इत्तेहाद है और हामिद करज़ई के जो हरीफ थे सदारती इंतखाबात में अब्दुल्ला उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि तालिबान के साथ मौजूदा सूरत हाल में अमन मुज़ाकरात नहीं हो सकते और बुरहानुद्दीन रब्बानी का कत्ल इस बात का शाहिद है कि मौजूदा सूरत हाल इस बात के मुतकाजी फिलहाल नहीं है कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं। अब्दुल्ला तालिबान से मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। हामिद करज़ई कह रहे हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए, जबकि खुद अमरीका तालिबान से मुज़ाकरात या तो कर रहा है या पसे पर्दा तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिशों में मसरूफ है। और दूसरी इत्तलात ये भी है कि तालिबान को जो असलहे मिल रहे हैं वो भी अमरीका ही से मिल रहे हैं। तो जो तीन तरफा या चौतरफा गेम है तालिबान को मरकज बना के, क्या समझते हैं कि ये लोया जरगा और इस तरह के दीगर इजलास से कोई नतीजा निकल सकेगा कि तालिबान के साथ क्या रवैया अपनाया जाए, उनको शामिल किया जाए या शामिल न किया जाए, या तालिबान को किस तरह से आइंदा देखा जा रहा है अमेरिका की पॉलिसी के तनाजुर में और खुद अफगान हुकूमत की पॉलिसी के तनाजुर में?
आपने बड़ा बसीत सवाल किया है। जहां तक लोए जिरगा का ताल्लुक है, ये 2200 अकाबरीन हैं अफगानिस्तान के जिनका ये इजलास हो रहा है। और आज अगरचे ये इजलास कल खत्म होने को था लेकिन इसमें एक दिन की तौसी की गई और ये इजलास आज भी हो रहा है, आज शाम तक ये खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब्दुल्ला क्या चाहते हैं। अब्दुल्ला ने जो बात कही है वो बड़ी साफ है कि जो तालिबान है वो इक्तदार में शिरकत नहीं करना चाहते बल्कि वो मुकम्मल इक्तदार चाहते हैं, इसलिए ये बात जो है ये काबिले कबूल नहीं है। सो इस बिना पर वो चाहते हैं कि तालिबान से कोई बातचीत बिल्कुल ना की जाए। दूसरी बात ये कि अमेरिका अपने तौर पर तालिबान से खुफिया तौर पर मुज़ाकरात कर रहा है और हामिद करज़ई सिर्फ अमेरिका की जुबान बोलते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनके हक में राय जो है ये हमवार की जाए। ये इसका बड़ा मकसद था लोए जिरगा का। दूसरी बात लोए जिरगा में जो रखी गई थी वो ये थी कि अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा जो है उसको तौसी उसमें की जाए। मकसद ये था कि 2014 के बाद जब अमेरिकी फौज बज़ाहर अफगानिस्तान से निकल जाएगी उसके बाद भी अमेरिका का अमल दखल फौजी एतबार से वहां रहना चाहिए, अमेरिका के फौजी अड्डे वहां कायम रहने चाहिए और अमेरिकी मफादात की निगरानी अमेरिका खुद करे। हो सकता है इसमें नेटो को फिर शामिल किया जाए या ना किया जाए, ये बात की बात है। लोए जिरगा में ये बात तो रखी गई कि इस मुआहदे में तौसी की जाए, लेकिन इसका दिलचस्प पहलू ये है कि लोए जिरगा में ये बात ये मुआहदा जो है ये पेश नहीं किया गया। अमरीका चाहता है कि इस रिटन मुआहदे को, इस लिखे हुए मुआहदे को खुफिया रखा जाए और ये कभी प्रेस में नहीं जाना चाहिए, ये सहाफियों के हाथ ये नहीं लगना चाहिए। सो एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आप एक मुआहदे की तौसी चाहते हैं, 2200 अफराद वहां बैठे हैं लेकिन आप उनको ये मुआहदा दिखाना नहीं चाहते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है और मैं समझता हूं कि इस किस्म का मजका खेज जो काम है वो मुझे तो बहुत अजीब लगता है। हो सकता है इसमें कोई उनकी दाखिली पॉलिसी का को मकसद हो। दूसरी बात ये कि अमेरिका अब ये चाहता है कि वहां से निकल भी जाए और वहां अपना इख्तदार कायम भी रखे और लोगों को ये तासुर भी दे कि अब वहां उसके कोई ऐसे लंबे चौड़े मफादात नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अफगानिस्तान मुख्तलिफ किस्म की मादनियात से माला माल है और अमरीका की नज़र उस पर भी है। कतई नजर इसके कि अमरीका वहां फौजी लिहाज से तो अपना अड्डा कायम रखना चाहता है लेकिन उसकी नज़र इन मादनियात पर भी है, इन वसाइल पर भी है जो अरबहा डॉलर की मालियत रखते हैं अपने अंदर। सो मैं समझता हूं कि ये एक बात तो अपने तौर पर तय है कि अमेरिका वहां से निकलना नहीं चाहता लेकिन तासुर ये देना चाहता है कि वो निकलना चाहता है, ये एक बात है। दूसरी बात ये कि लोए जिरगा में 40 कमेटियां कायम की गई थी और ये 40 कमेटियां مختلف امور پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی. ان میں ایک کمیٹی جس کا نمبر 39 تھا 39, اس کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں یہ نمبر قبول نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی, اور یہ بڑی مزیدار بات ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 39 جو نمبر ہے یہ پمپس کا ہے, یہ ان لوگوں کا ہے جن کو آپ دلال کہہ سکتے ہیں دوسری زبان میں. تو یہ ان کا ایک خیال ہے کہ ہم اس نمبر کے تحت کام نہیں کریں گے. سو طے یہ کیا گیا یہ طریقہ کہ 39 نمبر کو غائب کر دیا جائے اور اس کا نمبر 41 رکھ دیا جائے تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں. بہرحال یہ کل خاصا خلفشار رہا اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے, اور بعض لوگ یہ کہتے رہے ہم اپنی کار کی نمبر پلیٹ 39 اگر ہو تو اس کو بھی برا سمجھتے ہیں, چلے جائے کہ ہم 39 نمبر کی کمیٹی میں کام کریں. سو وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے. یہ بات جو ہے
جی قیصر امام صاحب
زیادہ خلفشار کا باعث رہی.
جی یہ بھی ایک
دوسری بات یہ رہی,
قیصر امام صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
عبداللہ اور دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کیا وہ بات پوری ہوگی کہ نہیں؟ جی ہاں
قیصر امام صاحب میں پھر آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا اسی سوال کے تناظر میں. یار بخاری صاحب, حامد قزئی نے اپنے بیان میں کہا افتتاحی تقریر میں کہ یہ اجلاس جو لوہیا جرگہ کو بلایا گیا یہ مشاورتی اجلاس ہے, اصل فیصلہ تو پارلیمان کو کرنا ہے, سینٹ کو کرنا ہے. تو جب اصل فیصلہ اور حتمی فیصلہ اسٹریٹجک معاہدے کے تناظر میں پارلیمنٹ کو ہی کرنا ہے تو اتنا بڑا اجلاس بلانے کی اور اتنا بڑا سیکورٹی رسک لینے کی اور اتنا زیادہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
جی بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حامد کرزئی جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ پارلیمان میں جو یہ معاہدہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ان کی پارلیمان میں کافی حد تک مخالفت ہوگی, اس لیے انہوں نے میرے خیال میں یہ سوچا کہ یہ غیر نمائندہ جو افراد ہیں ان کو جرگہ کے, چونکہ قبائلی روایت ہوتی ہے جرگہ بلایا جانا اور اس کا تمام فریقوں کو جو ہے وہ اس جرگے کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں ان غیر منتخب لوگوں سے ایک حمایت حاصل کر کے اور ایک طرح کی ایک پشت پناہی حاصل کر کے تو یہ معاملہ پارلیمان میں لے کے جاؤں. تو بظاہر تو اس کا مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہ غیر منتخب افراد سے ایک حمایت چاہتے تھے تاکہ پارلیمان میں ان کو کچھ تقویت ہو کہ جی جرگے کے لویا جرگہ کے لوگوں نے قبائلی روایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے, تو اس لیے چونکہ قبائلی روایت کے مطابق یہ جو ہے ان کے فیصلے کو سب فریقوں نے تسلیم کرنا ہوتا ہے, اس لیے پارلیمان کو چاہیے کہ یہ اس کو تسلیم کرے. یہ انہوں نے بظاہر اس لیے یہ لویا جرگہ بلایا. ادروائز اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی جو صورتحال ہے وہاں پر جتنے بھی فریق ہیں ان میں بلا شبہ بہت سے جو طاقتور فریق ہیں وہ تو اس معاہدے میں شریک ہی نہیں ہوئے, نہ طالبان آئے ہیں نہ شمالی اتحاد کے جو اہم رہنما ہیں وہ ہیں, اور کسی بڑے اہم رہنما نے اس جرگے میں شرکت نہیں کی ہے. تو اس جرگے کی جو مقصدیت ہے ان کے نزدیک تو صرف اتنی ہے کہ وہ غیر منتخب افراد سے حمایت حاصل کر کے پارلیمان میں جائیں. جہاں تک اب اس جرگے کا سوال ہے, اس جرگہ یہ جرگہ جو بھی فیصلے کرے گا جو فریقین ہیں وہ قبائلی روایت کے مطابق وہ تسلیم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اس میں اہم فریق تو اس میں شامل ہی نہیں ہوئے. جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے ہی روز جس دن یہ جرگہ یہ ہوا ہے اس کے دوسرے ہی روز کابل میں دو راکٹ فائر کیے گئے, ایک بندہ اس میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بات طے ہے کہ حامد کرزئی کی حکومت کی رٹ کس حد تک ہے کہ کابل بھی وہ جو ہے مزاحمت کاروں سے بچا ہوا نہیں ہے. اب وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں امریکی بیساکھیوں پر, اور امریکہ چونکہ یہاں سے بظاہر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ جانا تو چاہ کہہ تو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا, لیکن آپ ان کے عزائم اسی سے اندازہ لگائیں. یہ پچھلے دنوں کینیڈا میں جو وہ فورم ہوا ہے اس میں لیون پنیٹا جو ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے جو بات کی کہ جی ابھی انخلا کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا. ارے بابا یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک طرف 2014 کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا انخلا کی بات کرنا. تو امریکہ بیسیکلی چونکہ امریکی استعماری قوتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ دنیا کو جھوٹ فریب مکر کے ذریعے وہ اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں اور پھنساتے ہیں, اور حالانکہ ہر جگہ ان کو ہزیمت ہی ہوتی ہے, ہر جگہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے, आप वियतनाम को देख लें, आप ये जो है इराक में देख लें, वहां से भी उनको नाकाम नामुराद जाना पड़ा वापस। अब अफगानिस्तान में वो आए, यहां पर भी उनको जो है शुमाली कोरिया के साथ जो उन्होंने काम करना चाहा वो भी उसमें कामयाब नहीं हुए। इवन के ईरान के खिलाफ भी उन्होंने एक दफा कार्रवाई की कोशिश की, वहां भी उनको नाकामी हुई। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाइयां करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को भी घेरना चाह रहे हैं। तो मकसद ये कि ये अमरीकी इस्तेमारी कुवतों का ये एक वतीरा है कि वो झूठ मकर और फरेब के साथ दुनिया पर अपनी बालादस्ती, मैं इसको सो कॉल्ड बालादस्ती कहना चाहूंगा, अगरचे उन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ तरक्की की है लेकिन अखलाकी तौर पर वो इतने गिरावट का शिकार हैं कि वो सच्चाई का सामना करने से गुरेजा हैं और वो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो दुनिया के अपोजिट जा रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि अगर ये खुद अमरीकी आवाम आप देखें वहां पर उठ खड़े हुए हैं, सरमायादारी का निजाम जिसका वो अमरीका बहुत बड़ा आलमबरदार था वो वहां पर वो निजाम जो है वो उसका धर्म तख्ता होने को है। जिस दिन सरमायाकारी का निजाम जो है सरमायाकाराना निजाम का धर्म तख्ता हुआ उसी दिन अमेरिका का धर्म तख्ता हो जाएगा। तो ये मैं समझता ये हूं कि ये अमेरिका जो है वो उसके थिंक टैंक को अब ये सोचना होगा कि वो दुनिया की सच्चाई को कबूल करें और दुनिया के साथ चलें, दुनिया का अमन तबाह करने की बातें ना करें।
क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका यार साहब, बहुत शुक्रिया।
वो जमाना नहीं रहा कि कहीं पे कोई वाकया होगा तो उसकी जो है वो कोई सुनवाई नहीं होगी। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो इस ग्लोबल विलेज में आप किस बातें छुपा नहीं सकते हैं।
यकीनन यावर साहब मैं फिर हाजिर हूंगा। कैसर इमाम साहब, जाहिर है कि गुफ्तगू आपके बीच में रह गई थी, आपसे वो गुफ्तगू भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि जारी रखें। तालिबान के ताल्लुक से जो मेरा सवाल था और उसका जवाब अधूरा रह गया था, लेकिन साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगा जिम्न में कि क्या इस बात का भी इम्कान पाया जाता है कि लोया जरगा में जो फैसला हो उसे पार्लियामेंट में पेश ही ना किया जाए।
जी, इस बात का इम्कान जो है वो अपने तौर पर मौजूद है। पहली चीज तो ये है कि लोया जरगा जो भी फैसला करेगी वो हुकूमत जो है, जो सो कॉल्ड हुकूमत कहना चाहिए, हुकूमत पर उसकी पाबंदी नहीं है, हुकूमत पाबंद नहीं है उस फैसले को मानने की। अगर हामद करजई चाहें तो अपने तौर पर कोई फैसला कर सकते हैं और पार्लियामेंट को अपने तौर पर काम करने का उसकी अपनी जवाबदेही है कि वो क्या फैसला करती है। सो लोया जरगा का ताल्लुक इस बात से इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हामिद करजई ये चाहते थे कि अखलाकी तौर पर उनको इतनी पावर हासिल हो जाए। दूसरी बात, हामिद करजई ने एक बात ये कही है और बहुत जोर से कही है कि अमरीका के साथ मुआहिदा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक अमरीका ये बात कबूल न करे कि जो रात के वक्त हमले किए जाते हैं और लोगों के आमतौर पर घरों की तलाशी ली जाती है, अचानक किसी घर पर धावा बोल दिया जाता है, वहां से लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, जब तक ये रात के हमले बंद न किए जाएं और अमेरिका इस बात का पाबंद हो जाए कि वो आइंदा ये हमले नहीं करेगा, तो उस वक्त तक हम ये जो मुआहिदा है इसमें तौसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस वक्त तक हामिद करजई का एक ऐलान है। मैं समझता हूं कि उसकी एक वजह ये कहने की ये भी है कि वो चाहते हैं कि एक तरह की वो जो उन पर लेबल लग चुका है कि वो अमेरिका के पिट्ठू हैं और उनके एक तरह की उन्हीं की आवाज हैं, वो चाहते हैं कि ये लेबल जो है वो उनसे हट जाए और ये जाहिर किया जा सके कि वो अमेरिका की पॉलिसी की मुखालफत भी करना चाहें तो कर सकते हैं और करते हैं। सो मैं समझता, दूसरी तरफ ये कि अमरीकी सेनेट जो है उसने खास तौर पर कल इस बात पर जोर दिया है कि रात के वक्त ये जो तलाशी की जाती है, हमले अचानक किए जाते हैं, इनको बंद नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो लोग इन हमलों में, रात के वक्त के हमलों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं उनकी तादाद 2800 है और ये अफगानिस्तान की उन जेलों में बंद हैं जिन पर तमाम इंतजाम इंसराम जितना भी है और कब्जा जो है वो सारा अमेरिका का है, उसमें अफगान हुकूमत का अमल दखल नहीं है। सो अमेरिकी सेनेट के बाद लोग ये चाहते हैं कि ये हमले जारी रहने चाहिए इसलिए कि उनकी नजर में ये हमले बड़े कामयाब हैं, और दूसरी तरफ अफगान अवाम ये समझते हैं कि ये उनकी जाती जिंदगी में, प्राइवेसी में, रात के वक्त लोगों के घरों में घुस जाना, ये मुदाखलत जो है ये अखलाकी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, दीन हर लिहाज से ये गलत है। سو میں سمجھتا ہوں کہ حامد کرزئی صاحب اپنے طور پر کوشاں تو ہیں کہ اس معاہدے کو توسیع مل جائے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب تک یہ معاہدہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا تو اس کے بارے میں کوئی بحث جو ہے وہ بالکل بیکار ہے. 2200 افراد بیٹھ کے فیصلہ کیا کریں گے جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس معاہدے کے خد و خال ہیں کیا، اس میں لکھا کیا گیا ہے اور امریکہ اس سے چاہتا کیا ہے، وہ کب تک یہ توسیع چاہتا ہے اور اس توسیع کے مقاصد کیا ہے، یہ باتیں تو ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہیں. سو اس لحاظ سے میں دیکھا جائے تو یہ جو لوہے جرگہ کا شو ہے یہ شو کی حد تک ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے.
جی جی بہت شکریہ. یاور صاحب، جیسا کہ ابھی ہمارے لندن کے مہمان فرما رہے تھے کہ حامد کرزئی نے اپنے بیان میں شرط لگائی کہ یہ اسٹریٹجک معاہدہ اسی وقت ہوگا جب رات کے وقت کے بالخصوص حملے بند کیے جائیں اور گھروں کی تلاشیاں بند کی جائیں، تبھی یہ ممکن ہو سکے گا. لیکن سینیٹ نے بھی، امریکی سینیٹ نے بھی اس کو مسترد کر دیا، اور آج ہی خود افغانستان میں جو نیٹو فوج ہے اس کی جو کمان سنبھالنے والے جنرل ہیں انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم رات کے حملے بند کر دیں. اب جب ابھی لوہے جرگہ کا اجلاس جاری ہی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی طرف سے ان کی شرط کو مسترد کر دیا گیا، تو پھر اب کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اسٹریٹجک معاہدے کے تعلق سے لوہے جرگہ کے اجلاس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟
جی بالکل، دیکھیں امریکہ جو ہے وہ حامد کرزئی کا پابند نہیں ہے، حامد کرزئی تو ان کے ایجنٹ ہیں. امریکہ حامد کرزئی کی بات کو کیا اہمیت دے گا؟ انہوں نے تو واضح جواب دے دیا، حالانکہ حامد کرزئی نے اپنے خطاب میں یہ کہا تھا کہ شکوہ بلکہ مطالبہ کیا تھا واشنگٹن سے کہ آپ ہمارے اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں، ہماری جو ہے وہ سلامتی کا احترام کریں، ہماری خود مختاری کا احترام کریں. یہ انہوں نے بہت باتیں کی تھی، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن وہ تو اب یہ جو کچھ ہوگا اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو یہ اسٹریٹجیکلی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ہم آپ کے جو ہے وہ اس کا احترام کریں گے، آپ کی جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کا احترام کرتے ہیں اور احترام کریں گے، لیکن وہ کریں گے تو وہی کچھ جیسا کہ آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان میں تو امریکی فوج بھی نہیں ہے، پاکستان پہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پاکستان کو وہ پینٹس امداد دیتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے پاکستان کی قرارداد پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کی خود مختار پارلیمنٹ کی قرارداد آئی ہے ڈرون حملوں کے خلاف، مگر امریکہ وہ باز نہیں آ رہا ہے، وہ ایک بدماش کا کردار ادا کر رہا ہے. اور آئے روز پاکستان میں جو ہے اس امریکہ کے خلاف جلسے جلوس بھی نکلتے ہیں، عوام بھی باہر نکلتے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ تمام انسانی حقوق کی جو علمبرداری کی وہ بات کرتا ہے اس کو بھی دجیاں میں کھیر رہا ہے اور یہاں پر بے گناہ لوگوں کو ڈرون حملوں کا شکار کر رہا ہے. تو مقصد یہ کہ امریکہ ان کا پابند نہیں، امریکہ تو خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بدماش کا کردار ادا کر رہا ہے جو ان کا پابند نہیں ہے. اب یہ حامد کرزئی نے جو یہ لویا جرگہ بلایا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف امریکہ کے قیام کو افغانستان میں 2014 کے بعد ان کا جو قیام ہوگا، جو ممکنہ قیام ہمیں نظر آ رہا ہے، اس قیام کو جواز بخشنے کے لیے انہوں نے یہ لویا جرگہ بلایا ہے تاکہ غیر منتخب لوگوں سے وہ ایک سٹرینتھ حاصل کریں، حمایت حاصل کر کے اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں. اور پھر وہ اب یہ جرگہ اگر ان کی خواہشات کے خلاف بھی بات کرے گا تو وہ اس کے پابند نہیں ہے جیسا کہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے کہا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جرگہ میرے نظر میں اس کی کوئی اہمیت
بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ.
تو اس میں جو مین پلیئرز ہیں جو
بہت شکریہ کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں.
افغان عوام ہے، ان کے جو مین وہاں پر گروپس ہیں ان کے اہم رہنما اس میں شامل نہیں ہیں، جو مین ان کے سیاسی گروپس ہیں
بہت شکریہ بہت شکریہ
شامل نہیں ہیں. تو یہ غیر اہم اور غیر منتخب لوگوں کا انہوں نے جرگہ بلایا ہے اپنے آپ کو ایک اپنے دلی تقویت کے لیے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جو بھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ امریکہ نے کرنا وہی ہے جو خود انہوں نے یہ ایک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہماری آپ اقتدار اعلیٰ کا جو ہے وہ احترام کریں.
صاحب کی شکریہ آپ کا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب سجاد میر صاحب. السلام علیکم میر صاحب.
وعلیکم السلام. جی
جی سجاد میر صاحب، بات ہو رہی ہے لوہے جرگہ کی. حامد کرزئی نے بڑے ہی تمطراق سے کہا کہ یہ اسٹریٹجک معاہدہ افغانستان کے نفع میں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاہدہ اسی وقت होगा जब रात के हमले बंद किए जाएं और क्या कहते हैं घरों की तलाशियां बंद की जाएं वगैरह वगैरह, कई शर्तें उन्होंने लगाई। लेकिन अभी चंद ही घंटे गुजरे थे कि अमेरिकी सेनेट भी मुस्तरद कर दिया और नेटो की कमान जो अफगानिस्तान में उसने भी मुस्तरद कर दिया उनकी इस शर्त को। तो अब इस स्ट्रेटेजिक माहदे का मुस्तकबिल ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब अमेरिका ने उनकी शर्त को भी मुस्तरद कर दिया और खुद अफगानिस्तान के अंदर मुतअद्दिद और मुख्तलिफ हलके इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं।
असल में जी ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं ये तो उस वक्त तक मानी नहीं जाएंगी जब तक अमेरिका इस बात को तस्लीम नहीं कर ले कि उसे अफगानिस्तान में शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि अगर वो शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा तो मुजाकरात के लिए औंगी बौंगी उल्टी सीधी शर्तें लगाता है। कभी कहता है कि तालिबान हथियार डालें तो बात हो सकती है, कभी खुद कुछ कहता है और अंदर खाने बात भी कर रहा है और करना भी चाहता है और ये समझता है कि गले से ये मुसीबत उतर जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप अफगान खासतौर पर तालिबानों को ये बात बनवा कर के वो हार चुके हैं फिर कुछ करेंगे, जैसे अमेरिका में कुछ अफलातून किस्म के लोग ऐसी बातें जो है उड़ा रहे हैं, तो ये एक गलतफहमी है, ऐसा हो नहीं पाएगा। और इसी के नतीजे के तौर पर अमेरिका कंफ्यूजन का शिकार है, कभी पाकिस्तान से लड़ता है और उनको कहता है कि साहब आप हकानी नेटवर्क खत्म करें, अब बल्कि एक लतीफा चल पड़ा है कि वो हकानी नेटवर्क तो हमने खत्म नहीं किया, अलबत्ता हुसैन हकानी नेटवर्क जो हमारे सफीर है वाशिंगटन में वो हम खत्म करते दिखाई देते हैं, वो एक इंटरनल मामला एक मीमो जारी करने की जो बात होती है, खैर वो तो मैंने एक जुमला मुतरजा हो गया। लेकिन बात यह है कि इन सारी बातों का रिजल्ट यह है कि कोई बात तय नहीं हो पा रही। वो पाकिस्तान पे दोबारा अब बताइए हामद करजई कितने मुखलस हो सकते हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया अंदर से पता नहीं क्या करते हैं, तमतराक से बात करते हैं जैसे तमतराक का उन्होंने एक चोगा पहन रखा है, अंदर शायद खोखले हो ऊपर से एक चोगा नजर आता है, बल्कि बंदा ही नहीं है ये बंदा, बंदे के बजाय लोग कहते हैं चोगा है। तो ये चोगा जो कहता है कि जी ड्रोन हमले बंद किए जाए, घर घर तलाशी बंद की जाए, तो इसकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है जी। ये अवाम को ये कहने के लिए या तालिबान को ये कहने के लिए पैगाम देने के लिए कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूं, अमेरिका का नुमाइंदा नहीं हूं, ये बात कर रहा है। बुरहानुद्दीन रब्बानी को मरवा दिया इसने और अब लगा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ इतराजात करने के लिए, फिर तुम्हारी सिक्योरिटी ने इसे क्लियर किया, उन्होंने तलाशी ली, तुम्हारे पास रात को महल में ठहरा, अब तुम बातें करते हो, दूसरों के इल्जाम लगाते हो, उस वक्त से एक अजीब मस्खरेपन का सबूत दे रहा है जब से ये इख्तदार में आया है। और इसका मकसद स्वाय इसके लूट सूट के यानी अफगानिस्तान के इस पूरी सिचुएशन पे जो फायदा हामद करजई और उनके साथियों को पहुंचा है वो किसी और को नहीं पहुंचा होगा। और मेरे ख्याल में तालिबान का सबसे बड़ा, अमरीका चाहता है कि जी आप हामद करजई के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, और तालिबान कहते हैं कि हामद करजई तो का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये तारीख में तो एक लानती के तौर पर याद किया जाएगा, इसके सिवा इसका कोई रोल हो नहीं सकता। अब तालिबान का मसला ये नहीं है कि ये कहना कि तालिबान कोई ठीक लोग है कि गलत लोग है, ये उसूल ही नहीं है। मसला ये है कि आपने अफगान नेशनलिज्म को जोर दे के उभार दिया है और ऐसा उभारा है कि वो समझते हैं कि भाई अब हम अपनी कोई आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और एक लिहाज से गलत भी नहीं समझते, आप उनके नजरियात को छोड़ दें और उससे कटा ताल्लुक, वो जो लड़ रहे हैं अगर आपकी गैर मुल्की फौजियां बैठी हुई हैं, नेटो की फौजें हैं, अमेरिका की फौजें हैं, और वो दिन रात हमले कर रही हैं, ड्रोन अटैक कर रही हैं, आपके छापे मार रही हैं, तो आप क्या तवक्को करेंगे कि लोग उनके साथ होंगे कि गैर मुल्की फौज के साथ होंगे? ये तो अफवानों का मजाज नहीं है। तो चुनाचे एक नेशनलिज्म आपने खुद पैदा कर दी है वहां की सूरत हाल पर, और अब ये उनको कहना चाहता है कि जी गोया मैं आपका हमदर्द हूं, आओ मेरे साथ मिल जाओ। वो कैसे मिलेंगे साहब, वो इस तरह थोड़ा मिलेंगे। तो अमेरिका का भी जो ख्वाब है वो यही है कि चले करजई के साथ मिलकर वो हुकूमत बना लें, इस आयन को तस्लीम कर लें जो अमेरिका ने और इतिहादी फौजों ने उन पर नाफज किया है, और उसके साथ ही करजई को मान लें। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, यकीनन ये खतरनाक बात है, और वो ये भी नहीं चाहते यहाँ अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान में कोई भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की तकसीम हो जाए। जो उस वक्त ताजिक अफगान के नाम पर अगर आप तकसीम करना चाहेंगे तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देती जी। यही कोशिश उन्होंने रात में की कि वहां शिया सुन्नी और कुर्द इन हवालों से, कुर्द और अरब हवालों से अलग कर दिया जाए, यहां ये कोशिश ये कर रहे हैं, ये उम्मा को तकसीम करना चाहते हैं, जो पॉसिबल दिखाई नहीं देता तो चिढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में लुई जरगा ऐसे सब चीजें दुरुस्त तौर पर ये बात कही जा सकती है कि जब इसमें नुमाइंदे ही शामिल नहीं होंगे, जब आप तालिबान से बात नहीं करेंगे तो आप किन से बात कर रहे हैं? तो इसका जो पूरा नक्शा है उसका खुलासा यही है कि जब तक मामला बनता नहीं है उस वक्त तक सूरतेहाल जो है ठीक नहीं हो सकती।
जी सज्जाद मीर साहब, जाहिर है कि इन तमाम बातों के तनाजुर में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि फर्ज कर लिया जाए कि अगर ये स्ट्रेटेजिक समझौता हो भी जाता है, एलजरगा इसकी मंजूरी दे दे, पार्लियामान इसकी मंजूरी दे दे, तो क्या ये बराबरी का समझौता होगा?
किसी सूरत में बराबरी का समझौता नहीं है जी, और कोई इसकी मंजूरी देगा भी नहीं, ना कोई इसको इसके पीछे कोई ताकत है जो इसको इंप्लीमेंट करा सके। जब तक आप लड़ने वाली पार्टियां जो है, मिसाल के तौर पर ये समझ लीजिए कि तालिबान गलत है और आप तालिबान से समझौता करना चाहते हैं, अगर आप समझौता करना चाहते हैं तो तालिबान से करेंगे ना जी, तीसरे फरीक चौथे फरीक से तो नहीं करेंगे कि उसके बाद कह दें जी तालिबान से हमारा समझौता हो गया। आप उन्हीं से करेंगे जिनसे लड़ रहे हैं, और उनसे कर नहीं रहे, दूसरों के साथ आप मामला कर रहे हैं, इससे तो बात जो है ना बनती दिखाई देती नहीं
जी। जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। कैसर इमाम साहब, हामिद करजई ने अपने खिताब में कहा कि ये समझौता काबुल और अफगानिस्तान के मफाद में होगा, और इसलिए मफाद में होगा कि 2014 के बाद हम तनहा ना पड़ जाएं, हमारी फौज को ट्रेनिंग देंगे, हमारी सिक्योरिटी को संभालेंगे। गुज़िश्ता 10 बरस में अब तक वो कुछ नहीं कर सके, इनकी फौज को ट्रेनिंग नहीं दे सके, इनकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सके, तो आइंदा क्या तवक्को रखी जा सकती? तो इसका मतलब यह है कि 10 बरस के मुकाबले में 10 गुना वक्त इनको दरकार होगा। और
देखें, ये अपने तौर पर एक बहुत बड़ा लतीफा है, जोक है कि ये कहा जाए कि अगर अमेरिका यहाँ मुसलसल रहता है, तवील अरसे तक रहता है, तो ये अफगानिस्तान के मफाद में है। यानी मजेदार बात यह है कि जब से अमेरिका वहां आया है, इस पूरे इलाके में दहशतगर्दी आम हो गई है। हर शहर में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह दहशतगर्दी आम हो गई है जब से अमेरिका आया है, और वो चाहते हैं कि अमेरिका अब वहां मुसलसल रहे। इसका मतलब तो ये है कि दहशतगर्दी हमेशा रहे, और ये दहशतगर्दी हमेशा रखने का मुआहदा जो है, इसको वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के मफाद में है। हो सकता है ये उनके जाती मफाद में हो, अफगानिस्तान के अवाम के मफाद में तो ये बात है कि वहां से तमाम गैर मुल्की फौजी निकल जाएं, और किसी किस्म के भी जितने मफादात हैं गैर मुल्की वो वहां से खत्म कर दिए जाएं। ये है अफगानिस्तान के अवाम का मफाद। लेकिन हामिद करजई का क्या मफाद है, हो सकता है इस मुआहदे में हो, मैं तो इसे जोक समझता हूं।
जी सज्जाद मीर साहब, सबगतुल्ला मुजद्दी जो इस जरगा के सरबराह हैं, उन्होंने भी अपनी तकरीर की, और तकरीर में पाकिस्तान पर राबता मुनक़ता हो गया। अच्छा यार बुखारी साहब, आप इसका जवाब दें हमारे सवाल का कि सबगतुल्ला मुजद्दी ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि दहशतगर्द पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर आते हैं, और आलमी ताकतों को चाहिए कि वो इस सिलसिले में अफगानिस्तान का साथ दें और अफगानिस्तान के साथ खड़े हों, तो अमेरिका जिसको आलमी ताकत सबगतुल्ला मुजद्दी के बकौल कहा जाए, तो वो तो जाहिर है कि गुज़िश्ता 10 बरस से कम अज़ कम इस मसले में पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ हवाले से मदद भी करता रहा, तो उसने पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 10 बरस से अब तक क्यों नहीं दबाव डाला कि भाई तुम्हारे यहाँ से दहशतगर्द अफगानिस्तान ना जाए, और ये सिलसिला अभी से क्यों शुरू हुआ कि हक्कानी नेटवर्क पर जो है वो लगाम लगाई जाए वगैरह वगैरह? शुरू दिनों से अमरीका ने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की, और अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ?
ये सारा मैंने आपको बताया कि ये जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं और उनके जो एजेंट हैं, जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है और झूठ बोल के ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। हकानी नेटवर्क जो है वो कुनड़ में ऑपरेट कर रहा है, वहाँ वो पाकिस्तान का इलाका थोड़ी है कि वो पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप उनको वहाँ पर क्यों नहीं पकड़ते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं वहाँ पर, तो फिर पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी क्यों हो रही है? पाकिस्तान की ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इन पर शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाकों में ये क्यों, और चित्राल में, और ये क्यों वो दहशतगर्द कौन लोग थे जो वहाँ से आके जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया? आप ये अजीब उनकी मंतक है कि वो झूठ बोल के और दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को एक मातूब करा दे, पाकिस्तान को इल्जाम तराशियां कर रहे हैं पाकिस्तान, जबकि उनको मुसलसल ये कह रहा है कि हमारी हम तो खुद इस तो आपकी वजह से इस दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम तो अपने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करने के चक्करों में हैं। और उधर से ये पिछले दिनों ये गुज़श्ता 3-4 माह में कुछ 4-5 वाकयात हो चुके हैं जो उधर से अफगानिस्तान से जो है वो आए सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द आए और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमले करके और वो भाग गए। और ये अजीब उन्होंने मंतक दी है कि जी ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ना पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं तो आपकी सरहदों के पास ऊपर जो इत्तेहादी नेटो के फोर्सेज लगी हुई हैं वो फोर्सेज क्या कर रही है, क्या वो सोई हुई है, क्या पाकिस्तान का कोई वहां पे बंदा पकड़ा गया है? आपने वहां पर रबानी को कत्ल करवा दिया और उसका इल्जाम भी आप पाकिस्तान पर धार रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तान की खुफिया फोर्सेज ने जो है वो हकानी नेटवर्क को इस्तेमाल किया। हकानी नेटवर्क तो काम ही वहां पर कर रहा है जहां पर कुन्नड़ में जहां पर उनका वो अफगानिस्तान का इलाका है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इल्जाम तराशियां जो हैं ये कभी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी हमसाया मुल्क पर इल्जाम लगाते हैं, तो ये इन इल्जाम तराशियों से मामलात हल नहीं होंगे। अमरीकी अफवाज जो हैं ये इनके एक्चुअली ये जो लोया जिरगा बुलाया गया है इसका बेसिक मकसद जो है मैंने आपको बताया कि ये अमरीकी फोर्सेज के 2014 के बाद यहाँ अफगानिस्तान में मौजूदगी को एक उन्होंने जवाब बख्शने के लिए ये लोया जिरगा बुलाया है। लेकिन वहीं से ही उनके अफगानिस्तान से ही जो मुख्तलिफ उनके वहाँ पर ग्रुप्स हैं और अफगान अवाम के नुमाइंदा ग्रुप्स हैं और ताकतवर ग्रुप्स हैं उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि ये एक तो ये मुआहदा ही हराम है, दूसरा ये है कि ये जो काम करने जा रहे हैं ये अफगानिस्तान के इख्तदार आला और अफगानिस्तान की अर्जी सालमियत के मुनाफी है ये जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मुआहदा करने जा रहे हैं। आपने इस मुआहदे के लिए लोया जिरगा बुलाया है ताकि आपको एक जो है वो तकवियत हो और आप पार्लियामान से ये अपनी बात मनवा सके। जब आप अफगानिस्तान के मुक्तदर और मजबूत और ताकतवर ग्रुप्स को इनमें शामिल नहीं करेंगे, मशावरती अमल में वो शामिल नहीं होंगे, आप अफगानिस्तान के में इस्लाह अहवाल नहीं कर सकते। अगर अमेरिका का पपेट बन के काम करना है और अमेरिका के पॉलिसियों पर इस्तेमारी पॉलिसियों पर जो है आप दुनिया की आंखों में मजीद धूल नहीं झोंक सकते हैं, आपको जमीनी हकायक को तस्लीम।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार बखारी साहब, बहुत नाजुक
है,
बहुत शुक्रिया।
हिंदुस्तान एक हकीकत है, इसके गिर्द ईरान एक हकीकत है और तुर्की एक हकीकत है, ये तमाम ममालिक ये इस खित्ते के ममालिक हैं, इन ममालिक को इन्वॉल्व किए बगैर आप अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं कर सकते।
बहुत शुक्रिया आपका कैसर मान साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, सज्जाद मीर साहब के भी और अपने मौजूद नाज़रीन के। नाज़रीन आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और यकीनी तौर पर ये सब कुछ जो हो रहा है अफगानिस्तान में ये अमरीकी ईमा पर और अमरीका का एक गेम है, वो एक तरफ से मुज़ाकरात की बातें करता है, दूसरी तरफ तालिबान का सफाया करने की बात करता है, तीसरी तरफ से खुद अफगानिस्तान में तालिबान को ही असलहे फराहम करता है और फिर अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों के बहाने पाकिस्तान पर भी दबाव डालने की कोशिश करता है। लेकिन जाहिर है कि इन सब का नतीजा यही निकलता है कि अगर अफगानिस्तान से अमरीकी फौज और गैर मुल्की अफवाज निकल जाएं तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास सिज़ी और दीगर साथियों को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।